नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बड़ो सावधानी का प्रसंग है ये। मार्कंडेय पुराण में वो पक्षी जो बात बता रहे हैं पिता पुत्र के संवाद के साथ, कि एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि भाई थोड़ा जीवन में सावधानी से चलो। वो जड़ जड़ की तरह रहता था। उस बच्चे का नाम था सुमति, था एकदम जड़ की तरह, पागल की तरह, बोलता भी नहीं था। बार बार पिताजी ने कहा तब उसमें जची हुई बातें वो सब बोलने लगा कि पिताजी मेरे को क्या बताओगे, मैं तो बहुत घूम घूम के आया हूं, नरकों में भी गया हूं, ऊंचे लोकों में भी गया हूं, महान कंगाल भी बना हूं, बड़े से बड़ा राजा भी बना हूं। ऐसे ऐसे उसने बहुत बातें बताई, नरकों में भी गया हूं, कैसा कैसा नरक मिलता है। इन सब का प्रसंग चला। अब वो आगे बोलता है कि जो व्यक्ति अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता हो, देवता की निंदा सुनता हो, ब्राह्मणों की निंदा सुनता हो और वेदों की निंदा सुनता हो और सुनकर के खूब राजी होता हो, उन पापियों के कान में यमराज जी के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीले ठोंक देते हैं, गरम गरम लोहे की कीले, कि तुमने वेदों की निंदा सुनी, माता पिता गुरुजनों की निंदा सुनी, बिलाप करने पर भी छुटकारा कराने वाला वहां कोई नहीं मिलता। कई लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पौंसले माने घोंसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वा कर नष्ट करा देते हैं। उनके यहां इस नरक में आने पर कठोर स्वभाव वाले यमराज जी के दूत तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। चिल्लाओ कौन सुनने वाला है, कोई वहां दया नहीं चलती है। जो मनुष्य गाय, ब्राह्मण और सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य अकाल के समय अथवा संकट काल में अपने पुत्र, अपने नौकर, अपने पत्नी या अपने भाई बंधुओं को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है, केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, जब वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज जी के दूत उसे भूख से मारते रहते हैं। और जब वो चिल्लाता है मैं बहुत भूखा हूं, तो उसके मुंह में उसके शरीर का मांस नोच नोच कर डालते हैं और कहते हैं अब तू अपने ही मांस को खा। भागवत में भी आता है स्वयं मांसम खादयंती ही, भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो आदमी माता पिता गुरुजन शरणागत विपत्ति में पड़े हुए किसी को देखकर भी उसको अन्न नहीं देता है, तो उसको मरने के बाद अपने ही शरीर का मांस खाने, उसको दूसरी चीज खाने को नहीं मिलती। जो आदमी अपनी शरण में आया है और अपनी दी हुई वृत्ति से जीव का चलाने वाला मनुष्य है, उसको लोभ के कारण से त्याग देता है यमराज जी के दूत, उसको कोलू में पेरे जाने के कारण से यंत्रणा देते रहते हैं कि तूने दूसरों के पेट पर लात मारी, अब तू कोलू में तेरे को पीसेंगे। वो मरता नहीं है, यूं यूं दर्द होता है, आगे निकला गन्ना है वो तो पिस जाता है, वो आगे जो निकलता है वापिस रिष्ट पुष्ट होता है, फिर आओ ये चलता रहता है उसका। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। जो मनुष्य किसी की धरोहर हड़प लेवे, लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध देते हैं, ऐसे लोगों को यमराज जी के दूत रस्सियों से बांध देते हैं और दिन रात उनके हंटर कोड़े ये मारते रहते हैं और पास में लाकर जहरीले कीड़े बिच्छू सांप ये डाल देते हैं और वो उसको खाते रहते हैं। जो पापी मनुष्य पराई स्त्री को दुष्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, वे यहां भूख से दुर्बल रहते हैं, प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालु गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हुए रहते हैं। ये देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ ये सेमर का वृक्ष खड़ा है, इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग उन कांटों के अंदर बिंद गया है और इनके शरीर से खून निकल रहा है। इधर देखिए, दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। यमराज जी के दूत घरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बैठा कर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भार ढोता हुआ क्लेश पाता है, जैसे वो पा रहा है ऐसे बता। अब पिताजी के सामने ऐसे बोलता है जैसे वो नरक में ही खड़ा हो। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित रहता है। अपने से बड़ों को ऊंचे बैठाना चाहिए। जिन्होंने जल में मूत्र विष्ठा या थूक का त्याग किया है, वे लोग इस समय थूक विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंधि से युक्त नरक के अंदर डूबे रहते हैं। जो लोग भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन नहीं दिया था और अपने आप भोजन कर लिया। पहले अतिथि को भोजन कराना चाहिए। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वैदिक अग्नियों का परित्याग किया, वे पर्वतों की चोटी से बार बार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाले स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे इस समय यहां कीड़े बने हुए फिरते हैं। जिन्हें चींटियां खा रही है, पतितों का दिया हुआ दान लेने से, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। दान भी उनका नहीं लेना चाहिए। जो कुटुंब के लोगों मित्रों तथा अतिथियों को देखते देखते अकेले मिठाई उड़ाता रहता है, खाता रहता है, उसे यहां जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। एकला मत खाजियो भाई। देखो इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। देखो इधर इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कैसा विश्वासघात किया है, अतः ये भूख से व्याकुल तथा अंधा बहरा गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतघ्न ने अपने मित्रों की बुराई की, इसलिए तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोलू में पेराया जाएगा। इसके दंड कम होने वाले नहीं हैं। तत्पश्चात असिपत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से उसको चीरा जाएगा, फिर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, एक एक यातना को मैं कह नहीं सकता हूं। मित्रों के साथ विश्वासघात करने का सबसे बड़ा उनको नरक मिलता है। विश्वासघाती का उद्धार कैसे हो यह तो मैं नहीं बता सकता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्धान्न भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है, झाग। ब्राह्मण हरदम ताकते रहते हैं, बटे श्राद्ध है, बटे श्राद्ध है, आज बटे श्राद्ध है, बटे श्राद्ध है। कैसे लोगों को अगले जन्म में सर्प का झाग खाना पड़ता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्रह्म हत्यारे शराबी और गुरु पत्नी गामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंक कर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक पड़े रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर नरक योनियों को कितनी कितनी बार भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिलता है। फिर भी इनके लिए कई प्रकार के रोग यहां भी पीछा नहीं छोड़ते। यदि वे नहीं संभलते हैं तो फिर मरने के बाद नरक में ही जाएंगे, और फिर नरक से लौटने पर यहां हरदम रोग के अंदर ही पड़े पड़े जन्म धारण करेंगे और फिर वापस नरक में जाएंगे। ये आवागमन उनका चलता ही रहता है। गऊ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरक में पड़ता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, वे सब आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए। देखो आप बोर मत होना, बोर ये और भी कोई दूसरी कथा नहीं है क्या, यही कथा हम तो कहते हैं यही कथा सुननी चाहिए। बड़ी सावधानी आती है, यदि जो डर लगता है तो डर लगना चाहिए। देखो और किसी की बात मानते नहीं मानते, ये तो स्वयं नरक के अंदर गया हुआ देखा हुआ और भोगा हुआ बोलता है और कहता मुझे 10,000 जन्मों की बात याद है, वर्षों की नहीं जन्मों की। वो अनुभव की बात बोलता है, जैसे महापुरुष संसार का, प्रकृति का, ब्रह्म का, माया का अनुभव पूर्वक वर्णन करते हैं, ऐसे ये कहने वाला है, ये अपने अनुभव की बात बोलता है। कहा पिताजी सुनिए, यमराज जी के दूत किसी राजा को फटकारते हुए कहते हैं कि हे राजा, तुमने पतित से दान लेने पर ब्राह्मण को गधे की योनि में जाना पड़ता है। पतित का यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण नरक से लौटकर कीड़ा होता है, अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है, तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मनी मन लेने की इच्छा होने पर उसे निस्संदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभीष्ट साधन नहीं करता, वो मोहा छन्न मनुष्य मरने के बाद बानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है, और दूसरों का दोष देखने वाला मनुष्य नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुलथी, सरसों, चना, मटर, कलमी धान, मूंग, गेहूं तथा दूसरे अनाज की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुख वाला चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ दुष्कर्म करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद वो कुत्ता, सियार, बगुला, गीद, सांप, कौवे की योनि में जन्म लेता है। कितना चित्र बताया है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद वो सुअर होता है, फिर विष्ठा की कीड़ा होता है, फिर चंडाल होता है। जो मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चंडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले का कीड़े की योनि में जन्म होना है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने के पृथक पृथक और फल होते हैं। सुनिए, साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है, और तिल जिसमें मिला हुआ है उस अन्न का अपहरण करने से मनुष्य चूहे की योनि में जन्म लेता है। घी चुराने वाला नेवड़ा होता है। नमक की चोरी करने पर, जल का की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वो तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांसरा होता है और पुआ चुराने वाला चींटी होता है, मालपुआ। हविष्यान्न की चोरी करने वाला विस्तुया होता है। विस्तुया क्या जानते नहीं। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांस्य का अपहरण करने से हारित माने हरियल पक्षी की योनि मिलती है। चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होता है। सोने का पात्र चुराने से मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर, इनको चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रौंच और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है और उत्तम सुगंध युक्त इत्रादि पदार्थों की चोरी करने वाला छुछुंदर बनता है और वस्त्र का अपहरण करने वाला खरगोश की योनि में जन्म लेता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घुण होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र होता है और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हारित होता है। पानी की चोरी करने वाला पपिया होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वो भयंकर रौरव आदि नरक में जाकर वहां से लौटने के बाद तृण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष होता है और फिर थोड़ा सा पाप रह जाता है तो फिर मनुष्य की योनि में आता है। जो गाय के बछड़े को संसार करते हैं वो नपुंसक होता है और 21 जन्म बिताने के पश्चात भी वह कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव और मृग होता है और इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डूम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राजयक्ष्मा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे बहुत बार मिर्गियां भी आती रहती हैं। वह शूद्र योनि में जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वाले की दुर्गति का भी यही हाल होता है। गुरु को दक्षिणा न देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र ऐसी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की यातना से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित और मंदाग्नि की बीमारी से युक्त रहता है। जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, कृतज्ञता रखता है, दूसरों के गुप्त बात को प्रकट करता रहता है, निष्ठुरता दिखाता है, निर्दयी होता है, पराई स्त्री का सेवन करता है, दूसरे के धन हड़प लेता है, अपवित्र रहता है, देवताओं की निंदा करता है, सटता पूर्वक मनुष्यों को ठगता है, कंजूसी करता है, मनुष्यों के प्राण लेता है, ऐसे ऐसे निषिद्ध कर्म है इनमें लगा रहता है, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्य की खास पहचान है, ऐसा जानना चाहिए। सेवाराम जी महाराज कहते थे कि भाई ये स्वर्ग का प्राणी है, भाई ये थोड़े और लोग का नीचे लोग का प्राणी, ऐसा बोलते थे। कोई ऐसा होता तो जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद स्वतः प्रमाण है ऐसी दृष्टि रखना, गुरु देवता ऋषि सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, अच्छे महापुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना और जो भी उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य है वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुष के चिन्ह है, ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। यमराज जी के दूत कहते हैं कि राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों के संबंध में रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब आप आइए, हम आपको अन्यत्र ले चलते हैं, इस समय यहां सब कुछ आपने देख लिया। यमराज जी के दूत बोलते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर नहीं कल राजा आया था ना, ये जनक जी बहुत अच्छा। पुत्र कहता है पिताजी, हाँ वही राजा विपश्चित तो यमराज जी के दूतों की बात सुनकर के घबरा गए। यमराज जी के दूतों ने कहा कि महाराज, आप आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हो, यमदूत हूं, इतनी इतनी यातना और थोड़े बहुत कर्म आदमी से अज्ञानता से हो जाए, इतना नरक इतना कष्ट भोगना पड़ता है कि अभी क्या हुआ है, और चलो आप और देखो। यातना में पड़े हुए इधर सभी मनुष्य चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बोल रहे थे, हे महाराज विपश्चित, हम पर कृपा करो, दो घड़ी यहां ठहर जाओ, आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त में महान आनंद का संचार कर रही है और समस्त शरीरों में जो संताप पैदा और बाधाएं उनका नाश हो रहा है। हे नरश्रेष्ठ, हे महाराज, आपका महाराजपना तो आज सिद्ध हो रहा है, हम पर कृपा करो, कृपा करो महाराज, आप यही हमको आश्रय दो, हवा का आश्रय दो। राजा ने कहा यमदूतों से कि हे यमदूतों, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों मिल रहा है, मैंने कोई मृत्यु लोक में महान पुण्य कर्म किया था क्या, किया हो तो कौन सा कर्म किया था, और मेरी वायु से इनको शांति मिलती है, इस बात का क्या रहस्य है, आप बताइए। यमदूतों ने कहा कि आपका ये शरीर पितरों देवताओं अतिथियों भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ हुआ है, आपका शरीर बड़ा पवित्र है, सबको भोजन कराने के बाद बचे हुए भोजन से आपने शरीर को पुष्ट किया है, तथा आपका मन इन्हीं की सेवा में लग्न रहता था, सबकी सेवा में, आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु इसीलिए आनंददायिनी है, और इसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती है। आपने अश्वमेध आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र शस्त्र अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न छेदन जलन आदि महान दुख के कारण होते हैं वो एकदम कोमल हो जाते हैं। नारकी जीवों को जो प्राणी कष्ट देते हैं आपकी हवा लगते ही उनके अंदर कोमलता आती है, और कोमलता आने से वो प्राणी बिचारे शांति का अनुभव करते हैं। आपके तेज के कारण से इन पक्षियों को जो दंड देने का क्रूर स्वभाव मिला हुआ है वो स्वभाव दब जाता है, जैसे बहुत उठी हुई अग्नि की लपटें पानी की बौछार से शांत हो जाती है, ऐसे ही आपके तेज के कारण से शांति आ गई। राजा बोले, हे भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है, वो सुख मनुष्य को स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में नहीं मिलता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों की नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती है, तो मुझे तो सूखे काष्ठ की तरह इसी नरक में ही बैठे रहने दो। मैं तो यही अचल होकर के रहूंगा। यमदूतों ने कहा, राजन आइए आइए, अब आपको यहां से आगे चलना पड़ेगा। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा बोले, नहीं, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक मैं तो यहां से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से नगरवासियों को कितना सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर और पीड़ित मनुष्य पर, भले ही वह शत्रु पक्ष का क्यों न हो, उन पर कृपा नहीं करता है, ऐसे आदमी का जीवन धिक्कारमय है। जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उसके यज्ञ दान तप इस लोक परलोक के किए हुए जितने भी ऊंचे ऊंचे साधन है, सब साधन बेकार हो जाते हैं। जिसका हृदय बालक वृद्ध या दुखी प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, उसे मनुष्य मत समझो, वो तो महान राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्नि जनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध भोग करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, पड़ेगा। पर इन दुखी आदमियों को दुख करने में जो एक महान आनंद की अनुभूति है, वो मैं अपने स्वर्ग के सुख से बहुत बड़ा मानता हूं। स्वर्ग के सुख इसके सामने कुछ नहीं है। यदि मैं अकेला ही रहूं और अकेले होने से मुझे सुख मिलता है, मेरे अकेले दुख भोगने से इनको सुख मिलता है, तो इनका सारा दुख मुझे दे दो और इनको सुखी कर दो। इसलिए हे यमराज जी के दूतों, आप लोग चले जाओ, मैं तो अब यहीं रहूंगा। यमदूतों ने कहा, महाराज अब आप यहां नहीं रुक सकते, क्योंकि ये धर्मराज, ये इंद्र, ये आपको लेने के लिए आए हैं। यहां से आपको अवश्य जाना है, अतः चले जाइए। धर्मराज बोले, महाराज विपश्चित, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में ले चलता हूं। इस विमान पर चढ़ो, विलंब ना करो। राजा ने कहा, हे धर्मराज, यहां नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोग रहे हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त भाव से त्राई त्राई पुकार रहे हैं, मैं इनको छोड़ करके तो नहीं जाऊंगा। हे देवराज इंद्र, हे धर्मराज, यदि आप दोनों जानते हैं कि मेरा पुण्य कितना है, तो बताओ तो सही कि कौन कौन सा मैंने पुण्य किया है। धर्मराज बोले, जिस प्रकार समुद्र की जलबिंदु, आकाश के तारे, बरसात की धाराएं, गंगा के बालू का कण तथा जल की बूंदें आदि असंख्येय हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्यों की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहां नरक में पड़े हुए जीवों पर दया करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना और बढ़ गया। अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो, और यहां पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्म का फल भोगे तो इनको भोगने दो। तुम्हारा तो पुण्य और बढ़ गया, चलो ना, यहां क्या करते हो। राजा ने कहा कि हे देवराज इंद्र, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों का कोई ऊंचा पद प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा ये करते ही क्यों। इसलिए कुछ भी पुण्य है इन पापियों को नरक से छुटकारा में यदि लगता हो तो मेरा पुण्य लगा दीजिए। इंद्र बोले अब तो यहां से चलो, इस उदारता के कारण तो तुमने बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो 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 ये देखो ये पापी जीव कैसे नरक से मुक्त होते जा रहे हैं और ये किस प्रकार से प्रसन्न होकर नरक से बाहर जा रहे हैं। पुत्र कहता है पिताजी ये सब घटनाएं तो मैंने मेरी आंखों से देखा है। तदनंतर राजा विपश्चित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बैठाकर अपने दिव्य धाम में ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब हम लोग नरक की यात्रा से छूटकर अपने अपने कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले आए। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया है, साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण से जिस जिस प्रकार की योनियां मिली वो सब आपको मैंने बतला दिया है। पिता बोले कि बेटा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये संसार इतना हेय है, हे माने त्याज्य है। तुम्हारे वर्णन करने से हमारे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तुम्हारी बात पर हमने इसलिए विश्वास किया है कि ये सब तुम्हारा देखा हुआ और भोगा हुआ है। जिस प्रकार घटी यंत्र माने घटी घटी हरदम घूमती है पर वो घूमती है तो एक लोहे के कील के चारों तरफ घूमती है, इसी प्रकार ये संसार प्रवाह रूप से चल रहा है, वो केवल परमात्मा के सहारे से चल रहा है। मैंने इस संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लिया है बेटा। अब तक तो मैंने तुमको ज्ञान की बातें बताई थी, अब तुम हमको बताओ कि अब हमको क्या करना चाहिए। सुमति पुत्र बोलता है पिताजी यदि आप सब कुछ शंकाओं को छोड़कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखते हो तो मेरी तो ये राय है कि आप ये घर गृहस्थ का झंझट छोड़ करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन करो, वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आह्वनी आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दो और आत्मा को आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित और परिग्रह शून्य हो जाओ। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में करो और आलस्य छोड़कर एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करो। संन्यास आश्रम में योग परायण होकर बाह्य विषयों के संपर्क से एकदम अलग हो जाओ। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि है, मोक्ष का साधन है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये अनिर्वचनीय है एवं असंग है, जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ता। पिताजी बोले बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधन भूत उस योग का उपदेश दो जो मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार से योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग न हो, उस योग को तुम मुझे बताओ। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी जल से सिंचित कर दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है, मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूं। तुम्हारे वचन अमृत का काम करते हैं। मैं स्त्री पुत्र घर द्वार खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूं। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भलीभांति विस्तार पूर्वक उपदेश दिया था, वो आपको सुनाता हूं। भागवत में आता तो है कि दत्तात्रेय जी ने अलर्क को उपदेश दिया, लेकिन और आगे प्रसंग नहीं आता, अब इसमें आया है। पिताजी ने कहा, बेटा, तुमने दत्तात्रेय का प्रसंग तो बहुत अच्छा छेड़ा। ये दत्तात्रेय जी किसके बेटा थे? इन्होंने किस प्रकार का योग बताया है? और ये अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, यह एक विस्तार पूर्वक कथा है, आप उसको बड़े प्रेम से सुनिए। प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोड के रोग से व्याकुल रहने लगा, कोड हो गया शरीर में। ब्राह्मण ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर उसे उसकी पत्नी देवता के भांति पूजती थी। हे भगवान, वह अपने पति के पैरों में तेल लगाती, उसके शरीर दबाती, अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती, भोजन करती, भोजन कराती। इतना ही नहीं, उसके शरीर की सारी गंदगियों को वो धो पोंछ करके साफ करती। वह एकांत में बैठे हुए पति को पंखा लगा करके हवा करती। अपनी वाणी से कभी भी पति को कठोर शब्द नहीं बोलती। ध्यान से सुनना भाई, कभी कठोर शब्द नहीं बोलती, बहुत मीठी भाव से, मधुर भाव से बात करती। इस प्रकार अत्यंत विनीत स्वभाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा करती थी। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को बात बात पर झिड़क देता और फटकार देता। ऐसी फटकारें पड़ने पर भी वह अपने पति के पैरों में पड़ती, देवता के समान समझती और कहती कि मुझसे कोई गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। यद्यपि उस कोड़ी का शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह सती साध्वी पतिव्रता उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। उससे उसको सुंदर कोई पुरुष दिखाई नहीं देता था। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, कैसे कहें अभी कथा, कह देते हैं, मैं लिखा हुआ है। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम धर्म को जानने वाली हो। उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे सड़क पर जिस वेश्या को देखा था, मुझे उसके घर पर ले चलो, मुझे उस वेश्या से मिला दो, यह मेरे हृदय में बस गई है। जब से मैंने उस वेश्या को देखा है, तब से मेरे मन से वो वेश्या दूर होती नहीं। यदि वो मुझसे नहीं मिलेगी या मैं उससे नहीं मिलूंगा, तो फिर कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्यों के लिए स्त्री का प्रेम जीतना बहुत टेढ़ा होता है। उस वेश्या की सुंदरता पर मैं बड़ा मुग्ध हूं। उसको बहुत लोग चाहते हैं और मुझमें उसके पास जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज मुझे बहुत बड़ा संकट प्रतीत होता है। इस संकट से तुम मुझे उबारो। अपने कामातुर स्वामी की ये बात सुनकर के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई उस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और खूब सा धन लेकर पति के कंधे पर रख दिया और अपने पति को कंधे पर चढ़ा लिया और धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से ही सही वो वेश्या के घर की ओर चल पड़ी। रात्रि का समय था, आकाश बदलों से एकदम ढक गया था, बिजली चमकती थी। ऐसी वेला में वो ब्राह्मणी अपने पति का अभीष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी, एक सूली, उसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा रखा था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा हुआ था। उस अंधकार में दिखने के कारण से उसने अपने पैर से छूकर सूली को हिला दिया। इससे मांडव्य ऋषि कुपित हो गए और कहने लगे, जिसने पैर से हिलाकर जिस सूली पर मैं बैठा हूं उसको हिलाकर कष्ट पहुंचाया है, मुझे अत्यंत दुखी किया है, वह पापात्मा नराधम मनुष्य सूर्योदय होने पर निस्संदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा, वो मर जाएगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। ऐसा कठोर शब्द सुनकर वो पत्नी बोली, हे ऋषिवर, अब सूर्य का उदय नहीं होगा, मैं सूर्य को उदित होने ही नहीं दूंगी। अब वो रात बढ़ती गई, सूर्योदय हुआ ही नहीं, रात बराबर लंबी होती गई। उतने कितने दिन बीत गए, देवताओं को बड़ा भय लगा। वो देवता आपस में चर्चा करने गए, अरे सूर्योदय हुए बिना यज्ञ कैसे होंगे, श्राद्ध कैसे होंगे, वेदाध्ययन कैसे होगा, लोग अपनी चर्या कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों के द्वारा जो सद्भाव से कर्म किया जाता है वही ना हमको मिलता है, उसी से हम लोगों की सेवा करते हैं, इस तो सब बंद हो गया। ये तो दिन रात की व्यवस्था के बिना अब न ऋतु का ज्ञान रहेगा न महीने का ज्ञान रहेगा, और उस ज्ञान के लुप्त होने से दक्षिणायन और उत्तरायण भी नहीं होगा। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे होगा, और वर्ष के बिना काल की गणना कैसे होगी, और पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय नहीं होना, ये तो नहीं होना है। अब सूर्य उदय नहीं होगा तो लोग दान कैसे करेंगे, स्नान कैसे करेंगे, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा, होम के बिना हम लोगों को तृप्ति नहीं होगी। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती के उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर कल्याण करते हैं, नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं, और हम लोग यज्ञादि के द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर करते हैं, हम जल की वर्षा नीचे करते हैं और मनुष्य यज्ञ के द्वारा ऊपर धुआं पहुंचाते हैं, यज्ञ की सामग्री भेजते हैं, और जो दुरात्मा लोग वह हमारा यज्ञ भाग खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल सूर्य अग्नि वायु तथा पृथ्वी को दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु हो जाती है, और हमें तृप्त करके जो शेष अन्न का उपभोग करते हैं वे महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं, किंतु ये तो सारे काम बंद हो जाएंगे। अब कौन सी सृष्टि, कौन सी दृष्टि, अब क्या करें। ऐसे ऐसे देवता आपस में बात कर रहे थे। यज्ञों के विनाश से एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, देवताओं पतिव्रता के सामर्थ्य के सामने मेरा भी सामर्थ्य नहीं चलता, और सूर्योदय न होने से मनुष्यों के सब शुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, इसलिए अब आप लोग महर्षि अत्रि की जो पतिव्रता स्त्री है अनुसूया, उसके पास जाओ और उसके पास जाकर उससे प्रार्थना करो कि हे माता अनुसूया जी, आप सृष्टि की रक्षा के लिए कोई उपाय कीजिए। सब देवता लोग अनुसूया जी के पास गए। और अनुसूया जी से निवेदन किया तो अनुसूया जी बोली, देवताओं यूं तो तुम कभी हमारे पास नहीं आते, और जब तुम्हारे ऊपर कोई आफत आती है, कष्ट आता है, तब तुम हमारे पास आते हो, कोई बात नहीं, बोलो क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा, हम तो दिन चाहते हैं, जैसे पहले दिन होते थे रात्रि होती थी वही क्रम चाहते हैं। अनुसूया ने कहा, देवताओं पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर ही सूर्य उदित करा सकती हूं, मैं उससे अलग सूर्योदय की चेष्टा करूं ये उस पतिव्रता का अपमान होगा, तुम लोग पतिव्रताओं की महिमा को जानते नहीं हो, मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले के भांति दिन और रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का नाश भी न हो, क्योंकि उस पतिव्रता का एक ही तो लक्ष्य था कि सूर्योदय हुआ नहीं मेरे पति मरे नहीं, तो मुझे सूर्योदय भी करना है और उसके पति की भी रक्षा करनी है। सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी देवताओं से यूं कहकर अनसूया उस ब्राह्मणी के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनसुईया बोली, कल्याणी, अब अनसुईया जी तो बहुत बूढ़ी है, सीता जी को यूं बेटी समझ के आशीर्वाद देने वाली, वो यहां बोली, कल्याणी तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना, पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना, पति की सेवा से मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ मेरे सारे विघ्न दूर हो गए हैं। हे साध्वी, मनुष्यों को 5 ऋण सदा ही चुकाते रहने के लिए सावधान रहना चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार सत्पात्र को देना भी आवश्यक है, केवल संग्रह नहीं करना, देना भी। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। पतिव्रते, इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्राजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु ये इतनी बड़ी भूमिका बांधने का अर्थ है, परंतु स्त्रियां केवल एक ही काम, एक ही व्रत, एक नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा वाली बात, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। पति सेवा से पुरुष तो इतना अनुष्ठान का आधा भाग उसको यूं ही मिल गया। स्त्रियों के लिए अलग से यज्ञ करना कि श्राद्ध करना कि उपवास करना कोई विधान नहीं है। पति की सेवा मात्र से उन अभीष्ट लोकों की प्राप्ति हो जाती है। अतः महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाए रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही एकमात्र गति है, परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री को अनन्य चित्त से पति की सेवा करने पर मिल जाता है। उस ब्राह्मणी ने अनसुईया जी के वचनों को बहुत प्रेम से सुना और बूढ़ी अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया और आदर के साथ कहा, हे हमारी आदर स्वरूपा, मातृ स्वरूपा अनसुईया जी, आपकी वाणी में स्त्रियों के कल्याण की बातें छिपी हुई है। आप यहां पधार करके मेरे पति की सेवा में आपने फिर श्रद्धा बढ़ा दी है। मैं तो आपके दर्शन करके और आप जैसी पतिव्रताओं के मुख से वचन सुनकर के धन्य हो गई। आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, देवताओं ने भी आज मेरे पर बड़ी कृपा दृष्टि की है, आपको हमारे पास भेजा है। मेरे हृदय में भी ये बात तो है कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इस लोक में और परलोक में महान उपकार करने वाला होता है। हे यशस्विनी अनुसुया माताजी, पति के प्रमाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी पति के प्रसाद से, प्रमाद से नहीं, ऐसा पढ़ने में गलती होगी, पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक में और परलोक में सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारे, मुझसे अथवा मेरे पतिदेव से आपको जो भी कोई कार्य हो आप आज्ञा दीजिए। अनुसुईया जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रभावित हुई हूं, तुम्हारी सब बातों का मुझे ज्ञान है, देवताओं ने मुझे सब बात बता दी, मैं अंदर से बहुत खुश हूं। यहां इस संसार में एक पतिव्रता होती है उससे सारे कुल का, सारी पृथ्वी का उद्धार हो जाता है। तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण इस समय शुभ कार्यों का अनुष्ठान बंद हो गया है, इसलिए इंद्रादि देवता मेरे पास बड़े दुखी होकर आए और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। देखो बच्ची, मेरी बात सुनो। अब ये तो बच्ची है, बड़ी बूढ़ी अनुसुईया, मेरी एक बात सुनो। दिन न होने से समस्त यज्ञ कार्यों का अभाव हो गया, यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं होती, इसलिए हे तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं, अतः तुम यदि जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले के भांति सूर्योदय हो जाए। ब्राह्मणी ने कहा, मानव्येन महाभागे सप्तो भरता ममेश्वर है सूर्योदय विनाशम त्वं प्राप्सि त्यतिमन्युना। यहां मांडव ऋषि ने बड़े क्रोध में आकर के ये बात कही है कि सूर्योदय होते ही तेरा पति मर जाएगा। अनुसुईया ने उत्तर दिया कि हे कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पहले जैसा शरीर, स्वस्थ शरीर और सब अवस्था, ये जो अभी वर्तमान की अवस्था है, कोड वगैरह गंदी सब ठीक करके सुंदर शरीर बना सकती हूं। मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसलिए मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे घर पर आई हूं। पुत्र ने कहा, पिताजी, उस ब्राह्मणी ने कहा कि तथास्तु, ठीक है मां अनुसुईया जी, आप जब घर पर आकर ऐसा बोलती है तो मैं आपका आदर करती हूं। बस अनुसुईया जी तो बहुत आनंद में डूब गई और अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर सूर्यदेव का आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदनंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए महान मंडल से गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ होकर बड़े प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनुसुईया ने कहा, बेटा कोई चिंता मत करना, अभी मेरा प्रभाव देखना, पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसको तुम देखो, देखती रहो। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को भी कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग मुक्त हो जाए, वापिस तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 बरस तक ये जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती हूं, ये यदि बात मेरी सत्य है तो ये ब्राह्मण अभी रोग मुक्त हो जाए और अभी का अभी जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी और क्रिया के द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए होता है तो ये ब्राह्मण जीवित हो जाए। पिताजी, ये तो अनुसुईया का कहना ही हुआ कि उस ब्राह्मण की ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ एकदम रोग से मुक्त हो गया और तरुण देदीप्यमान शरीर से जीवित हो उठा, मानो कोई जरावस्था से रहित कोई देवता प्रकट हुई हो, देवता प्रकट हुआ हो। तदनंतर आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा हुई, देवताओं को बड़ा आनंद मिला। अनुसुईया से कहने लगी, अनुसुईया माता, आपने देवताओं के ही नहीं सारी सृष्टि का बड़ा उपकार किया है, और इससे भी बड़ी बात, इस ब्राह्मणी के लिए आपने इसके भी वचन रख दिए, मांडव्य ऋषि के भी वचन रख दिए, और सृष्टि में आपने बड़ा भारी उपकार का काम किया है। इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वरदान देना चाहते हैं। अनुसुईया जी, आप कोई वरदान मांगे। अनुसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा और देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप लोग वरदान देने के योग्य समझते हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो और अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों को मुक्ति देने वाला है। तब ब्रह्मा ने कहा, अनुसुईया जी, मैं आपका बेटा बनने के लिए तैयार। विष्णु ने कहा, मैं भी तैयार। शिव ने कहा, मैं भी तैयार। सब अनुसुईया जी का सबने सम्मान किया और सब अपने अपने घरों को चले गए। राम 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 राम।